प्रांजल और आलिया को अपने कमरे में देखकर निक के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? निक ने नाराज होकर पूछा। आपको सोते हुए देख रहे थे, परी ने जवाब दिया। परी, आई एम सीरियस, हमेशा तो तुम दोनों मुझे यहाँ सोते हुए देखने नहीं आती। अब जल्दी बताओ क्या काम है। निक के पूछने पर परी उसके पास बेड पर बैठ गई। मुझे पता चला है कि आप लोग किसी मिशन के लिए इंडिया जा रहे हैं। मैं नहीं, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। परी की बात खत्म होने से पहले ही निक ने उसे सख्ती से मना कर दिया। मैं भी आप लोगों के काम आऊंगी और मुझे इंडिया की याद आ रही है, परी ने उसे मनाने की फिर कोशिश की। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं है। हम लोग वहाँ घूमने के लिए नहीं जा रहे, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं वापस आ जाऊँगा तब मैं तुम्हें इंडिया लेकर ज़रूर चलूँगा, निक ने थोड़ा नरमी से कहा। परी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुकाकर बैठ गई। प्लीज़ अब इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, अगर मैं ले जा सकता तो कभी मना नहीं करता, निक ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं आपके साथ जाने की ज़िद नहीं करूँगी, लेकिन बदले में आपको मुझे भी एक प्रॉमिस करना होगा। और वो क्या? नहीं, पहले प्रॉमिस, उसके बाद बताऊंगी, परी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं, निक धीरे से बड़बड़ाया और अपना हाथ परी के हाथ पर रखते हुए कहा। अच्छा ठीक है बाबा, अब बताओ क्या चाहिए। आपका मिशन खत्म होने के बाद आप एक नए मिशन पर जाओगे और वो है प्रियल दीदी को ढूंढने का मिशन। जीजू, एक बार कोशिश तो करके देखिए। आपने दीदी के बारे में पता लगाने की, बोलते हुए परी भावुक हो गई और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ओके, निक ने उसका ध्यान हटाने के लिए बातचीत का रुख बदलते हुए आगे कहा। और हाँ, मेरी सारी पैकिंग कंप्लीट कर देना, पता है ना मुझे क्या क्या चाहिए होगा। परी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चली गई। उसके जाते ही निक अपने ख्यालों में खो गया। दिल तो बहुत करता है कि मैं उसे फिर से अपने करीब ले आऊं, लेकिन मैंने जो किया उसके बाद वो मुझे माफ कर पाएगी क्या? दिल में एक डर सा बैठ गया है कि अगर प्रियल ने मुझे माफ नहीं किया तो मैं उसकी नाराजगी सह नहीं पाऊंगा। तभी निक के मोबाइल पर एक कॉल आया और उसी से उसका ध्यान टूटा। मैं आ रहा हूँ, कहकर निक ने अपना कॉल कट किया और वहाँ से निकल गया। कोलकाता के एक प्रसिद्ध इलाके में काफ़ी सारी छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई थीं। वहाँ काफ़ी भीड़भाड़ का माहौल था। इन सब के बीच चार पांच आदमी एक गोदाम के अंदर सामान रखने के लिए आए। दादा संभल कर, कितनी बार बोला है कि कांच का सामान है, गिर गया तो मालिक फिर से दो बात सुनाएगा, फिर आपको किस बात की ताड़ाताड़ी लगी है, एक लड़के ने एक बुजुर्ग आदमी को डांटते हुए कहा। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे गिरा हुआ सामान उठाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की एक दुकान पर गई तो उसने पूछा, ये दुकान हमेशा बंद क्यों रहता है? इसमें किस दुकानदार का सामान रखा है? हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, मार्केट एरिया बहुत बड़ा है तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे गोदाम और कमरे बने हुए हैं जिसके अंदर आसपास के दुकानदार अपना सामान रख सकते हैं। अब चलो, हम देर हो रही है, कहकर वो लड़का उन सभी को बाहर ले आया। जिस कमरे की तरफ उसने इशारा किया था उसके आगे ताला लगा हुआ था, लेकिन ताले के अंदर उस कमरे के भीतर क्या चल रहा था कोई सोच भी नहीं सकता था। कमरा सामान से लदा हुआ था जबकि कमरे में बिछा हुआ कारपेट साइड में किया हुआ था। कारपेट हटाने की वजह से फर्श पर बना हुआ दरवाज़ा साफ दिखाई दे रहा था जो उस वक्त खुला था और वहां से नीचे की बनी हुई सीढ़ियां जाकर एक बड़े से अंडरग्राउंड हॉल में जाकर खत्म होती थीं। ये जगह कोई और नहीं, बिल्कुल सीक्रेट एजेंसी का मीटिंग पॉइंट था। वहां कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे जिनमें निक की टीम भी मौजूद थी। वैसे तैयारियां अच्छी की गई हैं, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ इस शॉपिंग मॉल के गोदाम में एक सीक्रेट एजेंसी अपना ऑफिस खोलकर बैठी है, एमा ने इधर उधर देखते हुए कहा। इतनी अच्छी तैयारियां करके भी क्या फ़ायदा जब कोई इंसान ही पंक्चुअल ना हो, पिछले आधे घंटे से हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, रॉन ने मुंह बनाते हुए कहा। निक की टीम को वहां पर एक आदमी लेकर आया था जबकि उनका हेड अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। निक ने धीमी आवाज में कहा, होल्ड ऑन, ये तो कुछ नहीं है, आगे पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ सकता है। भाई, आपका यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था ना, जैन ने निक के चिढ़े हुए चेहरे को देखकर पूछा। हाँ, काश मैं इसे वहीं से हैंडल कर पाता, निक ने जवाब दिया। वो लोग आपस में बात कर रहे थे तभी उस मिशन के हेड मिस्टर मुखर्जी वहां पहुंचे। मिस्टर मुखर्जी चेहरे से सख्त और लगभग 45 साल के व्यक्ति थे। वहां पहुंचते ही मिस्टर मुखर्जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, वेलकम टू इंडिया, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। प्रॉब्लम से डरते तो यहाँ पर थोड़ी ना आते, अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे की बात करें, ऑलरेडी आधे घंटे वेस्ट हो चुके हैं, निक ने सख्त लहजे में कहा। देरी के लिए माफी चाहता हूँ, मिस्टर मुखर्जी ने झुकते हुए कहा। इंडिया में और भी कई जगह हैं जहाँ पर इलीगल प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है और खुलेआम चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही है, फिर कोलकाता ही सबसे पहले क्यों और हमारी ही टीम क्यों, रॉन ने पूछा। मिस्टर मुखर्जी ने जवाब देते हुए कहा, कोलकाता इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह सब होता है, ये जानने के बावजूद भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ को ढूंढना चाहिए और इन्हें लीगल कामों की जड़ यहीं से शुरू होती है, जन्नत बाजार, जहाँ हर उम्र की लड़कियाँ खरीदी बेची जाती हैं, उनसे ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है, विदेशों तक में बेचा जाता है, यूएस में भी। और लेटेस्ट केसेस की बात करूं तो विजिटर्स को भी किडनैप करके इस काम में जबरदस्ती धकेला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा यूएस का नाम आ रहा है। जन्नत बाजार और वहां पर जाकर आप रेड क्यों नहीं करते? अगला सवाल निक की तरफ से आया। मिस्टर मुखर्जी, रेड तक की तो नौबत ही नहीं आती सर। इस काम में ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं कि पुलिस के हाथ इन तक पहुंच ही ना पाते। निक, फिर हमारा यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? अगर हमने वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश की या रेड डाली तो ये तो फिर से छूट कर निकल जाएंगे। सर, हर बार ये इसलिए छूट कर निकल जाते हैं कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है, जर्नलिस्टर मुखर्जी ने बताया। तो हमारा इसमें क्या रोल होगा? एमा ने पूछा। आदित्य भी मीटिंग में पहुंच चुका था और काफी देर से उनकी बात चुपचाप सुन रहा था। उसने एमा की बात का जवाब देते हुए कहा, प्लान बहुत सिंपल है एमा, उनके एरिया के अंदर जाना है, उनमें ही घुलना मिलना है और उनके ही प्रॉफिट के हिसाब से हमें चलना है ताकि उन्हें हम पर ट्रस्ट हो जाए। मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है, मैंने ही तुम लोगों का नाम सजेस्ट किया था। तुम लोग इंडिया से नहीं हो, इस बात का काफी फायदा होगा। देखने में भी तुम लोग इंडियन नहीं लगते तो उन्हें शक नहीं होगा, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि वहां पर कस्टमर बनकर जाना एक अच्छा डिसीजन होगा। अगर हम वहां के कस्टमर बनकर गए तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार ही जा सकते हैं, जैन ने कहा। एक आदमी है जिसे सब सरजी के नाम से जानते हैं, वो उनका बहुत खास है, या यूं कहें कि उनका दलाल है जो कि लड़कियां किडनैप करने का काम करता है, या किसी की भी कोई मजबूरी हो उस हिसाब से। हमने उसका ट्रस्ट जीत लिया है और उसे बोला है कि जन्नत बाजार को कोई खरीदना चाहता है तो तुम लोग वही डील लेकर जाओगे। आदित्य ने अपने बनाए प्लान को उन सबके सामने रखा। जन्नत बाजार की जन्नत शुरू होती है जन्नत से, मिस्टर मुखर्जी ने जन्नत बाजार के बारे में बताते हुए कहा। जन्नत से आपका मतलब? आलिया ने हैरानी से पूछा।
आदित्य ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आलिया, मतलब यह है कि वहाँ पर कोई जन्नत नाम की लड़की है जो कि ये सभी इल्लीगल काम करती है। एमा ने उसकी बात पूरी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद तो उनमें से ही एक है जिसे शायद किसी ने बेचा हो या किडनैप करके लाया गया हो। पूरा कोलकाता जानता है कि शाम को जन्नत बाजार में जन्नत का डांस परफॉर्मेंस होता है और वहीं से होती है इनकी रंगीन रातों की शुरुआत। वहाँ की मालकिन जन्नत नहीं, सुनहरी है, मिस्टर मुखर्जी ने बताया। सुनहरी के लिए जन्नत बहुत लकी है, तो हर रात पहले उसी का परफॉर्मेंस होता है। जन्नत का परफॉर्मेंस देखने वहाँ पर सभी लोग आते हैं, जो कि रात को किसके साथ होते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सुनहरी के आगे कितना पैसा फेंकता है, आदित्य ने बताया। वो मिस्टर मुखर्जी के साथ काफी दिनों से काम कर रहा था तो उसे इसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त थी और उन्होंने काफी सारी लड़कियों का रेस्क्यू भी किया था। इसका मतलब हमें आज रात को जाना होगा जन्नत बाजार, वो भी जन्नत के डांस परफॉर्मेंस के टाइम, निक ने पूछा। मिस्टर मुखर्जी ने बताते हुए कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, वो दलाल जिसे सब सरजी के नाम से जानते हैं अभी कुछ देर में आ जाएगा, आगे की प्लानिंग आप खुद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर निक ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, क्या वहाँ स्टूडेंट्स या रिपोर्टर्स का जाना अलाउड है? जी, इसके अलावा कपड़े, ज्वेलरी या छोटे मोटे सामान बेचने के लिए हम वेंडर बनकर भी जा सकते हैं, मिस्टर मुखर्जी ने बताया। उनकी बात सुनकर निक ने कहा, ओके देन, मैं, रॉन और आदित्य कल रात डील करने जाएंगे। आलिया और एमा, तुम दोनों दिन में वहां जाओगी अपनी रिसर्च या कुछ भी शॉर्ट मूवी शूट करने के बहाने। जैन, तुम वहां आसपास कोई शॉप कर लेना जिसके अंदर सब तरह का सामान मिलता हो, इसी बहाने तुम जन्नत बाजार के अंदर भी जा सकते हो और वहां की लड़कियां भी अक्सर सामान लेने शॉप पर आती रहेंगी। उन सब ने निक के प्लान पर सहमति जताई। सब कुछ तय होने के बाद वे वहां पर चाय नाश्ता कर रहे थे। हमारे रहने का क्या अरेंजमेंट है? निक ने कॉफी पीते हुए पूछा। जन्नत बाजार से कुछ दूरी पर ही एक अपार्टमेंट है, मैंने वहां आपके लिए दो फ्लैट बुक कर दिए हैं। दोनों ही फ्लैट अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर हैं, जहां कोई नहीं रहता। थोड़ी छोटे जरूर हैं, लेकिन प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, इतने कम समय में वही अरेंज हो पाए, मिस्टर मुखर्जी ने बताया। ओके देन, फिर हम अभी के लिए चलते हैं और आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे, बोलते हुए निक ने मिस्टर मुखर्जी से हाथ मिलाया। उसके बाद वे लोग वहां बने एक और सीक्रेट दरवाजे से वहां से जा चुके थे।